ओम शांति। जब हम क्लास में आते हैं तो रास्ते में क्या देखते हुए आते हैं? एक तो बहुत सुंदर फूल दिखते हैं और दूसरा रात को जो लाइट में पतंगे थे वो बिखरे हुए पड़े दिखते हैं। दोनों चीजें दिखती है ना। तो बाबा भी जब क्लास में आए होंगे तब ये दो चीजें देखी होगी। तो बाबा को तो जो चीज देखते हैं उसमें अपने बच्चे ही नजर आते हैं। तो आज बाबा ने कहा, तुम खुशबूदार फूल भी हो और क्षमा पर जल मरने वाले परवाने भी हो। तुम दोनों हो, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन भी बताइए। पहली बात, वो अपने में खुशबू भरने का अर्थात बदबू निकालने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। दूसरा, वो क्षमा पर पूरा फिदा हो जाएंगे। तीसरा, वो दूसरों को भी खुशबूदार फूल बनाते रहेंगे। बाबा कहते फूल नहीं तो कम से कम कली तो बनाएंगे। उसके अंतर्गत सेवा का भी बताया है कि वो कली भी कैसे बनेगी सामने वाला। जब उसको आत्मा देखकर आप समझाओगे, अगर उसको देह देखकर समझाते हो तो उसकी आत्मा सुनती नहीं है, अर्थात तीर नहीं लगता है। वो सदा श्रीमत पर चलेंगे, वो सदा मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। वो कभी भी अपना समय फालतू बातों में व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। छठी बात, वो अपना धन व्यर्थ कामों में नहीं लगाएंगे, अर्थात पाप कर्म में नहीं लगाएंगे। और सातवीं बात, जिसमें ये सारी बातें इंक्लूड हो जाती है, वो सदा अपना चार्ट रखेंगे कि मैं कहां तक खुशबूदार फूल बना हूं, कितना क्षमा पर फिदा हुआ हूं। इसमें बाबा ने भिन्न भिन्न तरीके से बातें बताई है। बीच में ये भी कहा है, मैं गरीब निवास हूं और बच्चे समझते हैं कि सुख और दुख भगवान ने दिया, मैं दुख नहीं देता, अपने कर्मों से दुख मिलता है। तो बहुत सुंदर मुरली में बाबा ने बच्चों को तैयार किया है। तो अभी हम फूल बनकर भी बैठेंगे तो क्षमा के परवाने बनकर भी बैठेंगे और चेक करेंगे बाबा ने जो बातें बताई है वो हमारे में कहां तक आई है। आज है 29/6/2026, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। बेअभिमान की बदबू निकलती जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले खुशबूदार फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर है, सच्चे फूल वो जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। वो तो नेचुरल है, पुरुषार्थ से, स्थिति से सब पहचानेंगे तो खुशबू फैलेगी। तो आज का गीत कौन सा होगा सब समझ गए ना? महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। उसमें गीत में भी आता है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो बाबा ने ये भी बताया है कि तुम फेरी पहनने वाले परवाने नहीं हो, तुम जल मरने वाले परवाने हो। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो वा फूल कहो बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहां तो कोई फेरी पहनने वाला नहीं है, सब बाबा के सच्चे परवाने बैठे हैं। ऐसा है ना कि मधुबन में आए, घूमा फिरा खत्म, ऐसा तो नहीं है ना। सब अपने में खुशबू भरकर वहां जाकर खुशबू फैलाने वाले हैं। क्षमा को भूल जाते हैं, हरेक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहां तक फूल बने हैं, और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। जितनी अपने में खुशबू भरेंगे इतनी फैलाएंगे। अपने जैसा फूल किसको बनाया है अब देखना। वो दादी जी थे ना, तो एक प्रोजेक्ट बनाया था, ईच वन टीच वन, अपने जैसा एक को बनाना है, कम से कम एक। ये तो बच्चे जानते हैं ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी, वो सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। अब देखना कितनों को बनाया है। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। अपने जैसा बलिहार कोई नहीं भी जाता है, फिदा भगवान पर नहीं भी होता है, लेकिन कम से कम बाबा का बने तो सही, इतने तक तो पहुंचाना है। पूरे परवाने वो हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई शाहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद लेते हैं तो बच्चों को उस शाहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद रहते हैं। किसको याद करते हैं? शाहूकार वहां घर में जाएंगे गरीब का बच्चा तो किसको याद करेगा? धनवान को याद करेगा या गरीब को याद करेगा? धनवान को याद करेगा, क्योंकि उसको समझेगा ना कि सारा कुछ मिलना यहीं से है। तो बाबा कहते कोई शाहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस शाहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद शाहूकार माँ बाप को करेंगे, अर्थात संपर्क उनसे रखेंगे, कनेक्शन उससे रखेंगे जिससे धन मिलता है। तो बाबा का भाव है कि तुम भी सब बाबा के बने हो, ईश्वरीय गोद में आए हो, ईश्वर पर फिदा हुए हो, तब उसकी ही याद रहनी चाहिए। साधु सन्यासी आदि है वो साधना करते हैं मुक्ति धाम जाए, सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। इसमें बाबा ने बहुत सुंदर क्लियर किया है। कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, वे हम ज्योति में समा जाएंगे, मिल जाएंगे और जाते हैं मुक्ति में पुरुषार्थ करने। तो घर जाना माना कोई मिल जाना अर्थ नहीं होता है, तो उन्हों को ये दो बातों का अंतर ही पता नहीं है कि मुक्ति में जाएंगे अर्थात घर जाएंगे, कोई मिल नहीं जाएंगे। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जा सकता, दो अलग बातें हैं ना। एक है हम घर चल जाएंगे, दूसरा है उसमें मिल जाएंगे, तो दो अलग बातें हो गई। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? पसंद है किसी को ये दुनिया? कोई को भी पसंद नहीं है। बच्चों को समझाया है जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। पहले तो अपने को आत्मा समझ के बात करो, दूसरा उसको ड्रामा पक्का कराओ। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, फिर ये है संगम युग। ये भी समझाया है सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। ये दो युग जब बदलते हैं तब भी संगम होता है, लेकिन बाबा उस संगम में नहीं आते हैं, बाबा ये लास्ट वाले संगम में आते हैं। वो युग फिरता है और ये वो युग चेंज होता है और ये कल्प बदलता है, कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते, कल्प कल्प आते हैं, जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूं। बाबा भी कहते मैं बीच में आकर क्या करूंगा, मेरा काम ही नहीं। जब बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, तब मैं आता हूं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बीच में अगर भगवान आ जाता तो लोग इतने गिरते ही नहीं, बिगड़ते ही नहीं, तो बीच में क्यों नहीं आते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम मुझे बुलाते ही नहीं हो, तुम बुलाते ही मुझे लास्ट में हो, मैं तुम्हारे बुलावे पर आता हूं। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती है। ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूं। मैं युगे युगे नहीं आता हूं। ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं, सब बैठे हैं ना उसी स्मृति में, कि हम बाबा के खुशबूदार फूल हैं और फिदा होने वाले परवाने हैं। परवानों में भी नंबरवार है, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं, थोड़ा सुना अच्छा लगा, थोड़ा पुरुषार्थ किया, थोड़े दिन चले फिर चले गए। कई तो यहां मधुबन तक भी आते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन वो फिदा होने की क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है। इसलिए बाबा कहते यहां से इतनी ताकत भर के जाओ, इतनी खुशबू भर के जाओ जो वहां कायम रहे। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, बाबा को फेथ है कि श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहां भी श्रीमत पर न चले तो, अगर कहां भी श्रीमत पर न चले तो क्या होगा, तो माया पछाड़ती रहेगी। इसलिए श्रीमत की मर्यादा से वो लकीर से बाहर नहीं जाना है। लकीर से बाहर गए और रावण उठा के ले जाएगा, माया ले जाएगी। श्रीमत का बहुत गायन है, श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में वैद्य जिन्होंने बनाए तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण क्या किया, जब शास्त्र द्वापर युग में लिखे गए तब बुद्धि रजो प्रदान थी, तो क्या हुआ, समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया, मैं आता ही तब हूं जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं लेकिन ये सनातन धर्म नहीं रहता है, तो बाबा आकर के अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। ऐसे नहीं, बाबा कहते ऐसे नहीं समझो कि वो देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं। देवता कहां चले गए, कहां चले गए, यहीं बैठे हैं सारे। परंतु ये भूल जाते हैं, रहते इधर ही हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, ये भी ड्रामा में नूंग है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। ये एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं, और कोई भी धर्म पिताएं आए और भी महान आत्माएं आई, कोई भी ये बड़ा कार्य नहीं कर सकते, एक बाप ही कर सकते। तुम कहेंगे अभी हम क्या हैं? अभी हम नरक के मालिक हैं। नरक के भी मालिक कहाँ हैं? अपनी कहाँ चलती है इतनी? कानून में रहना पड़ता है, कानून की बंदिशें हैं, मालिक तो नहीं है कोई भी। दुनिया तो तमो प्रधान बनना ही है। सब पतित हैं तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? त्राही त्राही करना पड़ेगा। वो तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। समझते हैं शरीर ने पाप किया, गंगा में नहाए, बात खत्म हो गई, शरीर जल गया, चले गए, यही सब खत्म हो गया। लेकिन ये भी पता नहीं है कि मैंने सारा ये अपना अच्छा बुरा बैग बैगेज पैक किया हुआ है, वो वही खुलेगा फिर अगले जन्म में। ये कोई समझते नहीं, बार 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 समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। बाबा भी समझते हैं कि तुम सभी को बहुत समझाते हो, बार बार समझाते हो, लेकिन इतना समझते नहीं है क्योंकि मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि तुम दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहां ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। पता रहेगा, वापस कलयुग में जाएंगे। अगर ये पता चल जाए तो वहीं खुशी गुम हो जाए, कह रहे बाप रे फिर वहां चले जाएंगे, फिर इतनी समस्या आएगी, फिर इतना दुख होगा, तो जो वो सुख है वो भोग नहीं सकेंगे, वो आनंद ही नहीं आएगा। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में कुछ भी याद नहीं रहेगा। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे? सतयुग में कुछ याद नहीं रहेगा। अभी सब याद है कि हम देवता थे, फिर अभी आए, फिर अभी देवता बन रहे हैं, तो कौन ठहरे? ऊंच कौन ठहरे? हम ठहरे ना देवताओं से भी ऊंच, क्योंकि सब ज्ञान इस समय हमको है। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेज फुल है, ऐसे तुम भी नॉलेज फुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार औलाद तो सब हैं, बच्चे तो सब हैं, परंतु नंबरवार कोई तो बड़े मस्त हैं, खुशी में रहते हैं ना। कईयों को देखो, जब भी देखो हमेशा फ्रेश रहते हैं, उमंग में रहते हैं, खुश रहते हैं। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सन्मुख बैठ बहुत प्यार से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे दे अभिमान छोड़ दो। कितना सरल बोलते हैं, बच्चे दे अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो। बाप तो सदैव है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। अभी समझते हैं ना लोग, सुख दुख सब भगवान की देन है। बच्चा आया तो भगवान ने दिया, चला गया तो भगवान ने ले लिया। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। जब मैं तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हो, तो बाप कभी दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से ही दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते, ये पक्की बात है। कहते हैं हे भगवान, बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। फिर बच्चा आया तो बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अगर दुखी हो गए, बच्चा चला गया, तो कर्म दुख कैसे मिला? अपने कर्म से मिला। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, ये आज का होमवर्क है पक्का। श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। स्कूल में भी टीचर का नहीं मानो तो फेल हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, मार्क्स आगे नहीं बढ़ेंगे। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। जब माया के बनते हैं तो दुखदाई बन जाते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट कहां तक चलती है? उस टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो एक जन्म फेल हो जाएंगे, एक साल खराब हो जाएगा। और ये अगर इस ईश्वरीय मत पर चलेंगे, इस टीचर की मत पर चलेंगे, तो उसकी रिजल्ट 21 जन्म चलती है। कितनी बड़ी बात है। फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं और माया कितना समय मत देती है। बाबा तो इस एक संगम पर मत देते हैं, एक ही जन्म मत देते हैं, और माया कितना समय मत देती है? आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं। बाप की माया की मत पर चलते क्या हुआ? बाप की मत पर चलेंगे तो 21 जन्म सुखी होंगे, और माया की मत पर चलेंगे तो 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। अभी कॉन्ट्रास्ट दोनों सामने हैं, अभी अपने ऊपर है कहां जाना है। बाबा ने दोनों बातें बता दी। जो अच्छे अच्छे फूल हैं, फिर उसकी निशानी क्या बताई? तो अच्छे फूल होते हैं ना गार्डन में भी, तो अच्छे फूल किसको कहते हैं? किसको सिलेक्ट करेंगे? बहुत अच्छा खिला हुआ फ्रेश होता है तो कहेंगे बहुत अच्छा फूल है, बहुत सुंदर फूल है। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे फूल हैं, वो उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबर वार है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। कोई नहीं चलेंगे तो बाबा अच्छा किसको कहते हैं? तो बाबा ने अच्छे की क्वालिफिकेशन बताई। अब देखना है कि हम बाबा के मनपसंद फूल हैं कि नहीं, परवाने है कि नहीं। गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं, साहूकार क्यों नहीं लिखेंगे? साहूकार नहीं लिखेंगे चार्ट, क्यों नहीं लिखेंगे? बाबा कहते वो आएंगे नहीं, ज्ञान सुनेंगे नहीं, चार्ट लिखेंगे नहीं, बाबा के पूरा बनेंगे नहीं, क्योंकि साहूकारों को डर लगता है कि यहां हमारे पैसे ले न लेवे, उनको ये डर रहता है। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है, और बात भी सही है, उनके भाग्य में भी नहीं है। अगर भाग्य में होता बलिहार जाते, परवाने बनते, फिदा होते, तो फिर बाबा को उसको भी राजा बना देना पड़ता। तो यहां भी धनवान वहां भी धनवान, ये दोनों बातें कैसे मेल खाएगी? साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूं, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। इसके लिए कौन सा मिसाल है? सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उसको महल दे दिया। साहूकारों का कोई यादगार नहीं है, कोई गायन नहीं है कि इसने इतना दे दिया तो उसको ये मिला। हमेशा ये जो कहानी आती है यादगार होता है वो गरीबों का है। तुम हो गरीब धन से नहीं, लेकिन बाबा कहते तुम एकदम तमो प्रधान बन गए, तुम बुद्धि से भी गरीब हो गए, तब मैंने तुमको धनवान बनाया। समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 पैसे दे देता है। अभी तो पैसे नहीं चलते हैं, कईयों ने तो पैसा देखा भी नहीं होगा, अभी तो केवल रुपीस चलता है। तो बाबा ने उस समय पैसे चलते थे, अभी लास्ट तक 50 पैसे चलते थे, वो भी बंद हो गए। तो बाबा कहते हैं समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उस समय तो 25-50 रुपए बहुत माने जाते थे, उनमें से 20-25 पैसे देता है। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब निवास नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती। क्यों ऐसा कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती? उसको बोलो क्लास में आओ, कोर्स करने आओ, सेंटर पर हफ्ते में एक बार आओ, तो भी क्या बोलेंगे? हमको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहां के साहूकार बन जाते हैं, और यहाँ के साहूकार वहां गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। ज्यादा धन नहीं है, गरीब है, तो बाबा को कहते हैं हम अपने घर परिवार बच्चों को पढ़ाएं, घर का ध्यान रखें, या यज्ञ में दे, तो बाबा क्या कहेगा? बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो, अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। जो बाबा ने जवाब दिया, कई कहते हम अपना घर देखें, फैमिली को देखें, या यहां दे, तो बाबा ने कहा अपना परिवार की बहुत अच्छी संभाल करो। सन्यासी ऐसा जवाब नहीं देंगे, क्या जवाब देंगे? सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं, माना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाते हैं, शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। शिव बाबा की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, ये किसकी जागीर नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है, इसलिए इतने मकान आदि बनाते जाते हैं। कई लोग कहते हैं, जब आप कहते हो विनाश होना है, सब खत्म होना है, तो आप लोग क्यों इतने मकान आदि बनाते हो? तो बाबा ने जवाब दिया कि यहाँ लास्ट में सब बच्चे आकर रहेंगे, तो जगह तो चाहिए। हमारा यादगार भी यहाँ ही है, देलवाड़ा मंदिर, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे। कौन भागेगा बाप के पास अंत समय? कौन भागेगा बाप के पास? भागेंगे वो जो योग युक्त होंगे। जिसका योग नहीं होगा वो आया हुआ भी चला जाएगा। जो भाग कर आएंगे उन्हों को मदद भी मिलेगी, बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, तो दिल थाम के बैठे रहना, वो सब हमें देखना है, जल्दी नहीं करना। जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बाबा ऐसे अनुभव कराएगा जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। ये तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किशन फिर बाबा को ये कह के फिर याद आया, किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितने ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, इसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वो अंदर प्रफुल्लित रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि ये किस अवस्था में रहते हैं, बाबा को बताना नहीं पड़ता है, हमने इतनी सेवा किया, ये किया, बाबा चेहरे और चलन से समझ जाते हैं इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी, वो कितना बच्चा आगे जाएगा, बाबा देख के समझ जाते हैं। गैलप उनकी करेगी, किसकी अवस्था गैलप करेगी? गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा, फिदा हो चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, परंतु ये आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ, मनुष्य को ही समझाते हैं। अगर हमारी आत्मिक स्थिति नहीं होगी, हम सोल कॉन्शियस में नहीं होंगे और दूसरों को समझाएंगे तो क्या होगा? ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसी को सुनाएंगे तो वो तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इस ऑर्गन से सुनाते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं अर्थात बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमान है, क्या फरमान है? अशरीरी बनो, दे अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो, ये बुद्धि में आना चाहिए। सारा दिन बाबा का ये फरमान बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। बल फीमेल है, उसकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, कई समझते हैं ना, हम बाबा के तो बन गए, समर्पित भी हो गए, यहाँ आकर बैठ गए, वो कोई कम बात है क्या? सब उसमें आ गया। बाबा कहते परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ, ये स्मृति पक्की हो। ये हमारा भाई है, इसको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो, अगर सामने वाले की देह को देखकर सुनाते हो तो क्या होगा? तो आत्मा सुनती नहीं है, सामने वाले के देह को देखा और समझाया तो उसकी आत्मा नहीं सुनेगी, सारा ऊपर से जाएगा, मतलब है अंदर नहीं जाएगा, सारा ऊपर से निकल जाएगा, उसको तीर नहीं लगेगा। पहले वार्निंग दो उसको, जिसको भी समझाते हो उसको पहले वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न तो मेल न तो फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को क्या कहेंगे? शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे, न स्त्रीलिंग में आता है न पुलिंग में आता है, इसलिए ज्योतिर्लिंग है, इसलिए ज्योतिर्लिंग बना दिया है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। ये आत्मा समझना ये बहुत बड़ी बात है, मेहनत की बात है, मेहनत से ज्यादा अटेंशन की बात है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है। शरीर को इंजेक्शन लगाते हैं तो शरीर की बीमारी दूर होती है, ये आत्मा पर बीमारी है तो आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी। आत्मा को इंजेक्शन नहीं लगा तब तक खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बाबा कहते बात बहुत छोटी है, छोटी है, बड़ी भी है, छोटी तो है लेकिन बहुत बड़ी है। इतने साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक ही बात का, देही अभिमानी बनना है, आत्मिक स्मृति में सदा रहना है। हम आत्मा से बात कर रहे हैं, बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव। फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है, मन मना भव में रह लो तो मध्याजी भव ऑटोमेटिकली होगा, स्वर्ग तो ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाएगा। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है, सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में तो सर्विस करनी है, क्यों? क्योंकि कर्मयोगी हैं, लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो। दिन में तो सोने की दरकार नहीं है, रात को सो जाते हैं तो बाबा कहते हैं नींद को कम करो और रात को पुरुषार्थ करो। कई लोग होते हैं वो सेवा भी छोड़कर, अगर पुरुष बैठ गए भी बाबा ने कहा है आत्मा 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 का अभ्यास करना है, तो बाबा कहते नहीं, तुम कर्म योगी हो, तुम्हारा टाइटल है नींद को जीतने वाले, रात को जागकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, लौकिक कारोबार भी होता है, ईश्वरीय कारोबार भी होता है, सेवा भी होती है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है, बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं, लेकिन बाबा कहता ये टाइम तो लिखते नहीं है कि रात को मैं कितने बजे उठ के ये विचार सागर मंथन करता हूँ। बड़ी मेहनत है, विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो, पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है, अभी तक भी वही बात चल रही है, आपस में एक दो को ब्रदर समझते ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते कि हम सब एक हैं, एक तो हो ना सके। अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे, जब बैठे थे तब तो अभी बैठे हैं, फिर अगले कल्प में बैठेंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, इतना ड्रामा में कोई को निश्चय हो तो बलिहार जाए। ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं, लेकिन वो ड्रामा अनुसार हिलता है। ऐसी ऐसी बातें समझ कर फिर समझाओ, हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं। अभी सारी मुरली का सार लास्ट में होमवर्क के रूप में कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं, कहां अपना पैसा पाप के तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। लास्ट में बाबा ने सारा चेक करने के लिए होमवर्क दे दिया। अच्छा, अब ये होमवर्क करना सारा दिन कि मैं कहां तक खुशबूदार फूल बना हूं, कितना औरों को फूल बनाता हूं, फूल नहीं तो कली तक लाता हूं, कितना अपना समय फालतू बातों में तो नहीं गंवाता, अपने धन को कितना सफल करते हैं, ये सारा चेक करने के लिए बाबा ने बता दिया। कितना मस्त रहता हूँ, बाबा ने कहा ना, जो खुशबूदार फूल होंगे वो सदा मस्त रहेंगे, मुरझाए हुए फूल को थोड़ी कोई उठाएगा, उसको तो फेंक देंगे, निकाल देंगे, खुशबूदार फूल होगा वो दूसरों को देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है, देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरी बात, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। ये अंडरलाइन आज का सुंदर वरदान है। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूरत भव। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूरत भव, वरदान मिल गया है। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। आगे ये कर्तव्य चलना है, अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, फिर आगे तपस्या से भस्म होने का कार्य चलेगा। इसके लिए सदा एकरस स्थिति के आसन पर स्थित हो, अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन है। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ये अव्यक्त इशारे टॉपिक चल रही है। अभी सभी ने सारा महीना इस पर अटेंशन रखा होगा, अभी दो दिन हैं। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। इसके अंतर्गत बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपनी शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना। बाबा भी कहते हैं, मैं केवल भोला नहीं हूँ, हिसाबी भी हूँ। ऐसे आप भी केवल भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। अच्छा, ओम शांति।